ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சமான் நீ ஆயா? சமான் பலே ஆயா? சமான் கா ஆயா? சத்துர்த்தி. யே தோ அவைஸ்தான ருபாசக இசே கஹதா ஹே. ஆர் ஜோ அன்ய லோக भोजन करते हैं, यज्ञपवित संस्कार होने के बाद सबको प्राणाहुति पंचाहुति दे करके भोजन करना होता है, तो इसे कह करके भोजन करते हैं। और ये जो भोजन करता है वैश्वान उपासक, उसका भोजन हो गया अग्निहोत्र। जैसे अग्निहोत्री घृत डालता है सायं प्रातः आहुति दे करके, ये जो भोजन में पांच आहुति दिया किसको? प्राण को। प्राण की आहुति, प्राण का नाम लेकर आहुति देता है, प्राणाया व्यानाय उदानाय कह करके। ये प्राण अग्निहोत्र इसको कहते। कौन सा अग्निहोत्र? प्राणाग्निहोत्र, प्राण के लिए अग्निहोत्र हुआ। और ये वैश्वानर उपासक, ये जो थोड़े भोजन करता है वो वैश्वानर उपासक का भोजन अग्निहोत्र हुआ। इसी अग्निहोत्र से सारे जीव तृप्त होते हैं। इसे सारे जीव चाहते है ये वैश्वानर उपासक कभी भोजन करे, वो भोजन करे तो तृप्त हो जाएंगे। और ये जो अर्थ सब कहा गया, इस अर्थों को प्रकाश करने वाले यह मंत्र है। ये मंत्र बोलने के लिए नहीं, ये अर्थों को कथन करने वाले मंत्र है। यथेह क्षुदिता बाला मातरम परिपासत एवं सर्वाणी भूतानि अग्निहोत्रम उपासत इति, अग्निहोत्रम उपासत इति दो बार कहा है। इसी अध्याय की समाप्ति है। अभी षष्ठ अध्याय यही है जिसमें महावाक्य तत्वमसी है। जिस महावाक्य के कारण, ये महावाक्य तो चार ही है, चार वेद में चार ही है, किंतु सब महावाक्य को कोई जाने नहीं जाने। तत्वमसि को तो सब जानते हैं, उसके बाद दूसरा अहम ब्रह्मास्मि को जानते हैं, और दो महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये कोई जाने नहीं जाने। तत्वमसि तो सब जानते है, और उसका नाम महावाक्य इसी में ही षष्ठ अध्याय में आएगा। इसी षष्ठ अध्याय में ही इसका उपदेश है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। नौ बार वो महावाक्य का उच्चारण करने पर ज्ञान हो जाता है। इसमें इसी तत्वमसि महावाक्य के लिए ही ये चांदोग्य उपनिषद बड़ा प्रसिद्ध है। नाम है महावाक्य, महावाक्य का अर्थ कोई बड़े लंबा चौड़ा नहीं है, उसका प्रयोजन बहुत महान है। प्रयोजन महान क्या है? ये अज्ञान के कारण ही ये संसार में बंधन में पड़ा हुआ जीव कितने दिन से, कब से? अनादि। अनादि क्या थे? कितने साल हो गए होंगे, कितने साल, कितने वर्ष, कितने युग, कितने कल्प, कितने कोटि कल्प होगे, ये भी नहीं कह सकते। इतने अनंत कोटि कल्प, अनंत कोटि कल्प कहेंगे तो ठीक होगा, कोटि कोटि कल्प कल्प कहेंगे तो नहीं, अनंत कोटि कल्प। इसलिए ये संसार में जो बंधन में स्थित है, जन्म मरण जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार भटक रहा है 84 लाख योनि में, ये भेद अज्ञान के कारण, भेद बुद्धि, भेद ब्रह्म, भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य को महावाक्य कहते हैं। महावाक्य तुम किम? भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य तुम, भेद ब्रह्म का निवर्तक वाक्य। अज्ञान के कारण भेद भ्रम होता है, भेद ज्ञान होता है, भेद भ्रम की निवृत्ति हो जाए आत्मज्ञान होने से, भेद भ्रम निवर्तक वाक्य महावाक्य, उसका प्रयोजन महान है, मोक्ष हो जाता है, इसलिए उसका नाम महावाक्य। और एक वाक्य होता है अवान्तर वाक्य। अवान्तर वाक्य है ब्रह्म स्वरूप बोधक वाक्य, जीव स्वरूप बोध। जैसे बृहदारण्यक में कहलाया था, कोयम आत्मा व्ययम विज्ञानमय हृदय प्राणी सुहृदय अंतर्ज्योति आदि आया, ये अवान्तर वाक्य। और महावाक्य है जीव ब्रह्म के जो भेद, इसी भेद ब्रह्म की निवर्तक निवृत्ति करने वाले वाक्य। मुख्यतः भेद है जीव ईश्वर का भेद, और सारे द्वैत प्रपंच भेद, भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य महावाक्य इसमें है। इसमें पहला आया था सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। तज्जलान का सर्वम खलिदम, सारे कुछ प्रपंच ब्रह्म है, सर्वम जो दिखता है सर्वम ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बिना कुछ नहीं है। सर्वम ब्रह्म समानाधिकरण हद्वन प्रथमांत है। एक समानाधिकरण होता है मुख्य समानाधिकरण, द्विजोत्तम ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है द्विज में उत्तम, द्विजत है जिनका दो बार जन्म होता है, द्विज माता के गर्भ से एक जन्म प्रसिद्ध है और द्वितीय जन्म होता है जब गायत्री व्रत यज्ञोपवीत संस्कार होता है, सावित्री गायत्री संस्कार होता है उसको कहते हैं द्वितीय जन्म, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ये गायत्री माता सावित्री माता उसमें जन्म होता है द्वितीय जन्म, इसलिए उसको कहते हैं द्विज। द्विज में उत्तम श्रेष्ठ है ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज में कहा जाता है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो द्विज में उत्तम ब्राह्मण, जो द्विजोत्तम वही ब्राह्मण, जो ब्राह्मण द्विजोत्तम, ये मुख्य समानाधिकरण हुआ। किंतु एक समानाधिकरण होता है बाध समानाधिकरण, बाध समानाधिकरण कैसे, रज्जु में सर्प देखकर के भ्रांति से सब भागे, फिर कोई आकर देखा रज्जु है, सबको बुलाता है देखो सर्पो रज्जु, कहता सर्प रज्जु है, सर्प रज्जु है, ब्रह्म काल में सर्परजु है या बाद काल में सर्परजु है, हमेशा सर्परजु, सर्परजु हमेशा किसम, बाद होने के बाद सर्परजु एक होते हैं, बाद हो गया रजु को देख रहा तो सर्परजु एक हो जाते हैं, तो कौन सा हमारा प्रश्न, सर्परजु किस समय होता है, सर्परजु कभी नहीं हुए, सर्परजु कैसे हुए, सर्प तो सर्प रज्जु रज्जु दोनों एक कैसे होगा, ब्रह्म हो जाए तो सर्परजु एक हो जाएंगे नहीं, कुछ भी करे सर्परजु एक कैसे होगा, तो सर्परजु जो कहा जाता है ये प्रामाणिक प्रमाण वाक्य है, क्यों का क्या कहता है, जिसको सर्प समझते हो सर्प नहीं किंतु रज्जु है, सर्परजु में सर्प का अनुवाद किया जाता है और उसको रज्जु विधान किया जाता है, सर्प का बाध करके रज्जु कहते हैं, रज्जु है जिसको हम सर्प समझते थे वो रज्जु है, अर्थात सर्प नहीं है किंतु रज्जु है, दोनों नहीं, सर्प का निषेध होकर के रज्जु को बताने के लिए कहते सर्प रज्जु। अब शाम को रात को देखा कोई खड़े है, चोर खड़ा है, चोर खड़ा है, दरवाजे बंद कर सो गए, सुबह देखते चोर यहाँ चला गया, देखा चोर है, देखा चोर नहीं पेड़ गए ठूंटी स्थानु, तो क्या कहते चौरह स्थानु, जिसको हम चोर समझकर डर रहे थे, देखो वो चोर नहीं, वो तो स्थानु है, चोर नहीं किंतु स्थानु है कहने के लिए चौरह स्थानु, सर्प नहीं किंतु रज्जु है कहने के लिए सर्प रज्जु, न कि रज्जु को देखने से सर्प रज्जु दोनों एक हो गए, सर्प रज्जु एक नहीं, सर्प नहीं है किंतु रज्जु है। इसी प्रकार सर्वम नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है और सर्वम ब्रह्म, ऐसे नाम रूपात्मक अनेक है ही नहीं किंतु एक अद्वितीय ब्रह्म है, ये पहले कहा था शांडिल्य विद्या में, सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान, उसके हेतु दिया तज्ज तल्ल तदन, सारे प्रपंच से ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, अब ब्रह्म में स्थित है, अब ब्रह्म में लीन होता है, ये सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से बिना कुछ नहीं है, जो दिखता है नाम रूप कल्पित है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं, ये बाद समानाधिकरण, पहले क्या था सर्वम ब्रह्म, और सर्वम ब्रह्म कैसे होगा अभी बताएंगे, और तो उसका हेतु दिया था तज्जलान, किंतु सारे जगत ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में कैसे स्थित है ये भी बताएंगे, और अभी अभी कहा था वैशान रूपासक जब खा लेता है थोड़ा अग्निहोत्र हवन करता है सारे जगत तृप्त हो जाते हैं, एक वैशान रूपासक एक व्यक्ति वो खाएगा तो सारे जगत कैसे तृप्त होगा, ये तभी संभव यदि वैशान उपासक सर्वात्मक हो, एक खाने से दूसरा तृप्त हो कहां होता है, एक दो तीन चार परिवार में है, एक खा लिया तो दूसरा पेट भरता है, ये सबको खाना पड़ता है, ये खा लेता है सबका, सब खाते हैं और सारे जगत तृप्त हो जाएंगे एक खाने से, तभी होगा यदि उपासक वैशान उपासक सर्वात्मक हो तभी होगा, तो एक वैशान उपासक खाने से सारे जगत तृप्त होता है, यदि आत्मा भिन्न भिन्न होगा तो वैशान रूपासक खाने पर अन्य की तृप्ति कैसे होगी, अन्य की तृप्ति तभी संभव है यदि वैशान रूपासक सर्वात्मक हो जाए, कैसे वैश्वान उपासक सर्वात्मक है, सारे आत्मा अलग अलग है, कोई भूखे है, कोई भोजन करता है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जन्म होता है, कोई मर रहा है, कितने सब वेद है, सब एक कैसे होगा ये बताएंगे। सब सर्वस्व आत्मा एक ही है और सर्वनाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म ही है, सब नहीं है और सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय उसमें है, ये सब कहने के लिए और भेद भ्रम की निवृत्ति मोक्ष के लिए आरंभ करते हैं। इसे पिता पुत्र की आख्यायिका है, पिता पुत्र आख्यायिका है, विद्या इतने सार है, पिता का अत्यंत प्रिय होता है पुत्र, सबसे पुत्र होता है प्रिय, तदैतत् प्रिय पुत्रात् प्रियो वित्तात्, बृहदारण्य पुत्र और वित्त से भी प्रिय आत्म तत्व, ये समझने पर शास्त्र श्रवण करने पर कोई विचार करने पर समझेगा, नहीं तो सबसे प्रिय होता है पुत्र और वित्त, ये लोके प्रसिद्ध। तो ये पुत्र पिता रूप से आख्यायिका है, पिता सबसे प्रिय अपने पुत्र को ये उपदेश करता है। वेदांते परम गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राया शिष्याय वा पुनः। वेदांत में परम गुह्य अत्यंत रहस्य गोपनीय आया कहा गया पुरा कल्प में, न अप्रशांताय दातव्यम, जो प्रशांत नहीं है उसको विद्या का उपदेश नहीं करे, और न अपुत्राय अशिष्याय, जो पुत्र नहीं है अथवा अपना शिष्य नहीं है उसका उसको विद्या का उपदेश नहीं करे, पुत्र को उपदेश करे अथवा शिष्य को, शिष्य पुत्र के समान है, पुत्र अत्यंत प्रिय उसको उपदेश करे अथवा शिष्य को, शिष्य का अर्थ नहीं खाली मंत्र दीक्षा लेने से शिष्य होगा, जो को वा गुरु यो हितोपदेष्टा, शिष्यत्व को यह गुरु भक्त एव, भगवान शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में कहते को वा गुरु यो हितोपदेष्टा, शिष्यत्व को यो गुरु भक्त एव, जो गुरु भक्त है शिष्यत्व में समर्पित है श्रद्धायुत है वो शिष्य है, और मंत्र दीक्षा ले और गुरु के साथ कोई संबंध नहीं, न गुरु देखते शिष्य क्या करता है न शिष्य सुनता है गुरु क्या कहते हैं, अंध बधिरथ सम गुरु और शिष्य, एक न सुना एक न देखा, कलयुग में गुरु शिष्य का संबंध है अंध बधिर के समान, अंध देखता नहीं बधिर सुनता नहीं, ये प्रसिद्ध है या बधिर सुनता है, गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होगा, गुरु अंध है शिष्य क्या करता है नहीं करता है गुरु को पता नहीं, मंत्र दीक्षा ले लिया मैंने पूजा करो धन संपत्ति दो कोई बात नहीं, आगे क्या करता है कुछ नहीं, कोई कहते ये सिखाते हैं अभी हम तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, मंत्र दीक्षा ले लो मोक्ष देने संसार से पार करने वाले गुरु का काम है, अब तुम्हारा शिष्य का क्या काम है, बस धन कमा रुपया घटेकर हमको दो, गुरु का काम दायित्व तो हमारे पर आ गया, क्या दायित्व तो है शिष्य को मुक्ति देने वाले, कोई कोई इसे प्रचार करते कुछ इसे मतवाद ले बस उनका शिष्य बन जाओ बाकी गुरु सब कर लेंगे, बड़ा सरल है ना, अब कुछ अपने को करना नहीं पड़ेगा, उनको गुरु मान लो बाकी सब कर लेंगे, ये शिष्य क्या करता है गुरु देखता नहीं, और शिष्य होता है बधिर, बस पूजा तो हम करेंगे गुरु क्या कहते हो नहीं मानेंगे, गुरु शिष्य संबंध हो गया तो क्या उनकी पूजा करेंगे आरती करेंगे, फटोरा करे पूजा करे आरती करे बहुत भोग लगाएंगे पुष्पमाला चढ़ाएंगे दीप धूप सब करेंगे, किंतु गुरु क्या कहते हैं उसको नहीं मानेंगे, कितने भक्त है ये गुरु है शिष्य है, ये अंध बधिर समय गुरु शिष्य एक न सुना ही एक न देखा, कौन सुनता नहीं शिष्य बधिर सुनाई नहीं पड़ता है, ये इसी प्रकार जो भक्त कहते भगवान के भक्त कहते बहुत लोग अपने भगवान का भक्त मानते हैं किंतु शास्त्र में जो कहा गया उसको नहीं मानते हैं। भगवान के कहते श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे, श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा, एक ही गीता भी ले लो भगवान तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो उनके आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, हम बड़े भक्त है क्या भक्त है जो आज्ञा का पालन नहीं करे, भगवान जो कहते उसी वाक्य का ग्रहण नहीं करे, कहते समझ नहीं आता, समझ नहीं आता खाली फटो पूजा करने से हो जाएगा, यदि समझ नहीं है तो समझो क्या अर्थ समझो, समझ करके पालन करो, से गुरु ने कुछ पत्र लेकर दिया और समझ नहीं आया कहकर उसको छोड़ दिया, पता है ऐसा समझ नहीं आता है तो समझो क्या कहते भगवान, भगवान तो कहते वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित क्षेत्र ज्ञान चापी माम विद्य। भगवान कहते भगवान क्या कहते उसको समझो, इसलिए भगवान जो गीता में कहते उसको जो पालन नहीं कर करता है वो उसको भक्त कहा जाएगा, उनकी आज्ञा का जो उल्लंघन करता है वो भक्त है। इसलिए ये बधिर के समय यदि आज्ञा उल्लंघन करता है शिष्य वो कोबा गुरु हितोपदेष्टा, तो ये ऐसा नहीं जो उपदेश करते शिष्य का हित और गुरु देखते शिष्य का कल्याण कैसे हो। हित क्या होता है, किसको हित कहते हैं, हितोपदेष्टा तो वैद्य तो कहते इस चीज खाओ इस चीज नहीं खाओ, वो भी तो उपदेश करते हैं, किन्तु हित क्या है, सबसे हिततम होता है इंद्र प्रतर्दन संवाद ही। प्रतर्दन देवदास स्वर्ग में पहुंच गया अपने पौरुष से सामर्थ्य के बल जाकर के कहा इंद्र राजसभा में उपस्थित होकर कहता है मैं तुमसे युद्ध करूंगा। इंद्र ने देखा ये मर्त्य से आया कैसे सामर्थ्य मेरे पास स्वर्ग सभा में आ गया और कितने साहस है मुझे कहता है तुमसे मैं युद्ध करूंगा। आ युद्ध करके इसको मार दें तो क्या बड़ी बात है, हमारे घर पर कोई आया उसको मार कर फेंक दिया, ये कोई युद्ध तो समान स्तर में होता है। मर्त्य मनुष्य आया इंद्र राजसभा में उसको मार देना इसमें कोई बड़ापन नहीं, अतिथि जैसे उसको ऐसा मानना ठीक नहीं। इंद्र कितने बड़े और सामान्य किसी को मार दिया ये क्या है, ये ठीक नहीं। और कहीं इतने कहता है युद्ध करने के लिए, युद्ध करते समय हार जाए तो हम क्या होगी, बेइज्जती होगी। इसे इंद्र तो समझदार है, कहा मैं तुमको बर दूंगा बर मांगो। और ये प्रतर्दन भी कोई सामान्य नहीं है, ये तो किसी सामर्थ्य से वहां पहुंच जाए, बोला बर क्या मांगना है आप ही बर बताओ, आप ही दे दो जो सबसे मनुष्य के लिए हित है आप दे दो, आप ही बर मांगो हमारे लिए, मगर हमारे भी बर क्या आप बताओ, क्या हमारे क्या हम मांगे आप बता दो, क्या मुझे मांगना चाहिए ये आप बताओ, आप ही बर हमारे लिए वारण करो, उनके ऊपर छोड़ दिया। और वो बर देने के लिए प्रतिज्ञा करने के बाद जो आप उसके लिए हित वही बर देना, तो ये कहता जो आपके मनुष्य के लिए सबसे हित है क्या है, हिततम ब्रह्म विद्या। वर देने के लिए प्रतिज्ञा की मांगो और वो कहा जो हमारे लिए हित आप ही हमारे लिए वर्ण करो, तो इंद्र जानता है सबसे हित क्या है, हित क्या है सबसे ब्रह्म विद्या, तो फिर वो क्या क्या करेगा, ब्रह्म विद्या को उपदेश करेगा कोई धन संपत्ति देकर भगा देगा, प्रतिज्ञा की तो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया क्योंकि ब्रह्म विद्या हित है। तो कोवा गुरुयो हितोपदेष्टा, हितोपदेश करने वाले गुरु है और हित कौन है, ब्रह्म विद्या उपदेष्टा है गुरु। और शिष्य को यो गुरु भक्त है, शिष्य कौन है जो गुरु भक्त गुरु आज्ञा पालन करे ग्रहण करे श्रवण करे वो शिष्य है। तो अपुत्राय अशिष्याय मतिम न दद्यादिशाय, पुत्र अथवा शिष्य तो ने समर्पित नहीं तो उसको नहीं प्रदान करे, तो यहाँ पिता पुत्र की आख्याय क्या है, पिता का अत्यंत पुत्र होता है, पुत्र होता अत्यंत प्रिय, प्रिय पुत्र को विद्या देते हैं, ये सार है सबसे सारतम है, इसको दिखाने के लिए आख्याय के रूप से श्रुति कहती। श्वेत केतुर हारुणे आस तंह पितो वाच श्वेत केतो वस्स ब्रह्मचर्यं नवे सौम्यास्मात कुलीनो अननुच्य ब्रह्म बंधुरिव भवती। श्वेत केतुर ह आरुणे आस, श्वेत केतु नाम से ह ये प्रसिद्ध है, इति ऐसे था इतिहास के लिए ह ऐसे हुआ था। आरुणेय अरुण का पुत्र है, वो आरुणी उसका पुत्र होने से आरुणेय, अरुण का पुत्र हो गया आरुणी और उसका पुत्र है आरुणेय, अरुण का पौत्र आरुणेय था कश्यमेय। तम वह पिता वाच उसको पिता ने कहा, आरुणे ने कहा उद्दालक आरुण ने, हे श्वेत केतु ब्रह्मचर्य बस गुरुकुल में जाकर के योग्य देखा, अभी पुत्र का समय हो गया विद्या के पात्र है, उम्र हो जाने से कहा तुम जाकर के हमारे कुल के अनुरूप गुरु के आचार्य के पास जाकर के ब्रह्मचर्य बस ब्रह्मचर्य वास करो, ब्रह्मचर्य पालन करके गुरु सेवा करके विद्या ग्रहण करो। नवे समय अस्मत कुलिनो अनुच्य ब्रह्म बंधुरी भवती, और हमारे कुल में होने वाले कोई हे सौम्य प्रेम से बुलाते हैं प्रिय दर्शन प्रिय हे सौम्य, हमारे कुलिन होकर के अनुच्य वेद के अध्ययन नहीं करके, अध्ययन वेद कहता है, वेद से अध्ययन सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम, गुरु उच्चारण करने के बाद अनुच्चारण करना आता है, अनुच्य अनुच्य था अनुवाद उच्चारण करना, अनुच्य का था ऐसे अध्ययन नहीं करके, गुरु उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक वेद अध्ययन नहीं करके ब्रह्म बंधुरिव भवति। जैसे कोई होता है ब्रह्म बंधु, स्वयं तो ब्राह्मण नहीं है किन्तु ब्राह्मण का बंधु अथवा ब्राह्मण को अपना बंधु कहता है, स्वयं ब्राह्मण का धर्म पालन नहीं करके जो रहता है उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। जो स्वयं ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म पालन करता तो ठीक है, और ब्राह्मण होकर के अपना धर्म पालन नहीं करता तो उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। जैसे ये आया था दृप्त बाला की पहुंचेगा राज्यसभा में, राजा को क्या बोलता है, ये राजन्य बंधु पंचमा राजन्य बंधु प्रश्नान अपराक्षित, ये राजन्य बंधु क्षत्रिय बंधु मुझे पांच प्रश्न पूछा, मैं एक भी नहीं बता पाया। क्रुद्ध होकर के राजा को कहता है क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय का आचरण नहीं करता है वो, तो क्षत्रिय बंधु है। क्षत्रिय बंधु का तो स्वयं सदाचार्य नहीं, क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करता है, मैं ब्राह्मण होकर उसके पास गया सम्मान नहीं करे, मुझे पूछा प्रश्न अपमान हुआ, तो ब्रह्म बंधु कर कहता है। योगवासिष्ठ में इसे एक ब्रह्म बंधु प्रकरण है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और अपने को ब्रह्म ज्ञानी मान लेता है उसको कहते ब्रह्म बंधु, ब्रह्म ज्ञानी का बंधु मानता है ब्रह्म बंधु। और उसकी बड़े निंदा की गई ब्रह्म बंधु प्रकरण में, अत्यंत जो मूढ़ है मूर्ख है कुछ नहीं जानता है वो भी कभी ज्ञान को प्राप्त करेगा मुक्त हो जाएगा। ब्रह्म बंधु है उसकी बहुत दुर्गति है, कभी ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, कभी मुक्त नहीं होगा। अत्यंत मूढ़ है मूर्ख है सब, जितने मनुष्य है कभी पशु भी थे, कभी जन्म होते सब मूर्ख है, और पहले भी कभी कोई क्या नहीं क्या पता नहीं, किंतु कभी कुछ करते कभी कुछ करते, पुण्यकर्म सत्कर्म करते करते कभी कभी उत्तम जन्म प्राप्त करते हैं, विवेक वैराग्य प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी जो उत्तम है बुद्धिमान वैराग्य ब्राह्मण है जाति हो संपन्न है, अभी जो कोई विरक्त है साध्या ज्ञान प्राप्त करता है, वो भी कभी पशु पक्षी योनि में था, कभी पाप कर्म करता था, कभी कितने जन्म पुण्य कर्म करके आया, किसी प्रकार हो अत्यंत मूर्ख अविवेकी पामर भी कभी मुक्त हो जाएगा। कभी कभी सत्कर्म थोड़े करते करते महापुरुष के अनुग्रह से कभी उत्तम जन्म प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा, किन्तु जो अभी योग्य बन करके वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए नहीं करके ज्ञान नहीं हुआ किन्तु अपने को ज्ञानी कहलाता है मान लेता है अथवा कहलाते है, तो ब्रह्म बंधु का योगवाष्टक में उसकी बहुत निंदा की गई, उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। उसको एक बार परमात्मा ने कृपा कर मनुष्य जन्म दिया, वेदांत को श्रवण किया, करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए नहीं करके इसे ही अपने को ब्रह्म ज्ञानी मान लिया, वो ब्रह्म बंधु हुआ, उसकी मुक्ति नहीं हुई, बहुत निंदा की। वो स्वयं तो अपना कल्याण नहीं करेंगे, बहुत लोग भी भ्रांति में डालेंगे, भ्रामक हो जाते हैं, जो स्वयं भ्रांत है दूसरे को कैसे ठीक उपदेश करेंगे, बहुत को भ्रांति में डालते, भ्रामक बहुत पाप होता है, बहुत दुर्गति होती है। योग वास्तव में आया तो ये कहते तुम हमारे कुलीन होकर के ब्रह्म बंधु जैसे होना है ठीक नहीं, मतलब अत्यंत निकृष्ट है ब्रह्म बंधु, हमारे कुलीन में होकर के वेद आदि अध्ययन नहीं करो ज्ञान प्राप्त नहीं करो अब ब्रह्म बंधु जैसे होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात जो सदाचारी ब्राह्मण होकर अपने धर्म पालन नहीं करता है, वेद अध्ययन नहीं करता है, ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो ब्रह्म बंधु जैसे हो जाता है। अर्थात जो ब्रह्म बंधु अत्यंत निकृष्ट है उसके जैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करो। इसमें आगे अध्ययन करके आएगा फिर उसको पिता उपदेश करेंगे, तो स्वयं अभी पिता स्वयं उसको उपदेश नहीं करके गुरुकुल में क्यों भेजते हैं, तो भगवान भाष्यकार यहां कहते अनुमान किया जाता है सो प्रवास में पिता को जाना था। ऐसे कभी प्रवास में जाते हैं किस कर्म के लिए और किसी राजा के पास रहकर कुछ पौरोहित करते था, कहीं कुछ अध्यापन करते प्रवास में जाते थे कि अधिवेशन में प्रवास जाना पड़ता था, इसलिए उसको नहीं रह करके अन्य के पास भेजे। भगवान भाष्यकार कहते इसे अनुमान किया जाता है कि क्यों गुणवान पुत्र होते हुए भी, क्यों गुणवान इसलिए उसको आगे ज्ञान होता है, जो ज्ञान को प्राप्त करता है वस्तु तो वही गुणवान है, वही सब कुछ है, यदि ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, बाकी जितने भी गुण हो, जितने भी कला हो, वो सब अविद्या के अंतर्गत है। दो विद्या का विभाग कर दिया, परा और अपरा, परा विद्या अपरा विद्या। अपरा विद्या में सारे वेद उपनिषद सब विद्या, ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद विद्या, सर्पजन विद्या, बहुत जितने शास्त्र है सब अपरा विद्या में आया। अपरा विद्या में जितने शास्त्र ज्ञान सब का नाम कंठस्थ करना कठिन, इस शांतिंग में आगे आएगा। नारद जी को बहुत ज्ञान शास्त्र ज्ञान था, सनत गुण के पास जाते हैं। ये वेद आदि से लेकर के जितने सब विद्या सो अपरा विद्या। अपरा विद्या के अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, अथ परा अथ कहकर अपरा विद्या सो कहने के बाद अभी परा विद्या कहते। परा विद्या कौन? यया, जिस विद्या से तद अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान को ही परा विद्या, ब्रह्म ज्ञान ही परा विद्या, ब्रह्म ज्ञान है विद्या, वो परा विद्या, एक ब्रह्म ज्ञान विद्या ही अज्ञान का निवर्तक होने से वो पराविद्या, उसको छोड़कर बाकी जितने हैं सो अविद्या के अंतर्गत है।